Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
पहले उच्चारण कर लें. त्रैसांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनापथजुषं निणामेको गम्यस् त्वमशिपय सामर्णव इव. पहले शब्दार्थ कर लें इसका. त्रय, त्रय बोलते हैं वेद को, जो वैदिक सनातन धर्म है. सांख्यम शब्द का अर्थ यहां पर, जो गीता में सांख्यम योगम आता है वह नहीं लेना. सांख्यम का अर्थ है कपिल मुनि प्रणित सांख्य दर्शन. योग है पतंजलि योग. पशुपति मत इस सयु मार्ग है, वैष्णव मत है. प्रभिन्ने एक दूसरे से भिन्न भिन्न है. भिन्न भिन्न प्रस्थान के होने पर भी इदम परम अदह, ये जो हमारा मत है, सिद्धांत है, दूसरे से श्रेष्ठ है. इस प्रकार से आपस में जो है ना, ये मत भेद करते हैं. इदम परम, परम कार्य सर्वोत्कृष्टम. अदह मल्लय की वह मार्ग. पथ्यम कार्त हितकारी. रुचिनाम वैचित्र्यात्, रुचियों के विचित्र होने से, भिन्न भिन्न होने से, रिजु कुटिल नाना पथजुषाम. रिजु बोलते सरल, कुटी बोलते टेढ़ा. ये नाना रास्तों को सेवन करती हुई निणाम मनुष्यों की, पैशाम नदियों के लिए, अर्णव बोलते हैं समुद्र, ई मल्ल तरह समुद्र की तरह त्वम आप ही को, तो एकमात्र है गम्य असी, मतलब प्राप्त है. इसका तात्पर्य है चाहे कोई वैदिक मार्ग से चले, चाहे सांख्य योग पशुपति वैष्णव किसी मत से, वह आपको ही प्राप्त करता है. जैसे नदियां, चाहे कोई सीधी जाए चाहे घूम कर जाए, नदियों से प्राप्तव्य सागर है. इसी प्रकार से सारे लोग आपको ही प्राप्त करते हैं. ये तो हो गया शब्दार्थ. जिस प्रकार से मान लीजिए जल है, जल हमें आंख से दिखाई पड़ता है, पर उसी जल को कोई पानी कहता है, कोई आप कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है. एक ही पदार्थ को जो आंख से दिखाई दे रहा है, उसको कई शब्दों से पुकारा जाता है. इसी प्रकार से एक ही शिव तत्व है, उसको अनेक शब्दों के द्वारा लोग जानते हैं. और एक दूसरी चीज है जो कि अनुभव में आती है पर आंख का विषय नहीं. जैसे मान लीजिए कोई लड़की है सामने बैठी, उस लड़की को हम देख रहे हैं, उसका पिंड है शुद्ध लड़की पिंड, परंतु उसको कोई कहता है कि ये शालिनी है, कोई कहता है पप्पू है, कोई बोलता है मेरी बेटी है, कोई कहता है भतीजी है, कोई बोलता है कि मेरी यह पत्नी है, कोई बोलता है मेरी माँ है, कोई बोलता है मेरी चाची है. तो आंख के सामने जो पिंड है, लड़की का पिंड, वो तो एक है, परंतु अनेक शब्दों के द्वारा व्यवहार करते हैं. वैसा वह कार्य भी करती है, वैसा फल भी होता है. इसी प्रकार से वह जो तत्व है, वह तत्व एक होने पर भी अनेक शब्दों से व्यवहित होकर के तत्त्व अनुसार कार्यक्षम होता है, कामनाओं को परिपूर्ण करता है. दृष्टांत दिया नदी का, जैसे कावेरी जो है पूरब होकर जाती है, गोदावरी सीधी जाती है, नर्मदा नदी पश्चिम होकर सागर में मिलती है. पर सारे नदियों का गंतव्य है सागर. सागर में जाने के बाद इयम गंगा, इयम यमुना, इयम नर्मदा, अयम कावेरी, ये नाम नहीं रहता है न वहां रूप होता है, बस सागर कहलाती हैं. ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यों के द्वारा आप ही प्राप्तव्य हैं। रुचिनाम वैचित्र्यम कहा, रुचि शब्द का अर्थ लोग करते हैं इच्छा, च्वाइस करते हैं ना, पर यहां पर ऐसा अर्थ नहीं है। ये तो सामान्य बहुत मोटा अर्थ है। किसी की रुचि है इडली डोसा खाने में, किसी की है सब्जी रोटी, किसी की है आपकी समझियो चावल दाल सब्जी में, ये भी अर्थ है, पर ये सामान्य अर्थ, यहां पर ऐसा अर्थ विवक्षित नहीं है। यहां पर रुच शब्द का अर्थ है दीप्ति, रुचा दीप्तव धातु है व्याकरण का, तो रुचा दीप्तव से रुचि शब्द बनता है। दीप्ति शब्द का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति बोलते हैं प्रकाश को। तो रुचिनाम वैचित्र्यात् का अर्थ है कि सभी जीवात्माओं के ये तेज संस्कार भिन्न भिन्न है। जैसे गणित के अनुसार जब हम कोई वृत्त बनाते हैं ज्यामिति गणित में, तो केंद्र के सहारे जो वृत्त बनते हैं उस वृत्त में बिंदु होता है, उस केंद्र के साथ बिंदुओं की समान दूरी होती है, पर प्रत्येक बिंदु का मुख अलग अलग होता है। किसी बिंदु का पूरब, किसी का पश्चिम, किसी का उत्तर, किसी का दक्षिण होता है। उस केंद्र के साथ बिंदुओं की समानता हो, समान दूरी होने पर भी उनका मुख अलग दिशा में होता है। ऐसे यहां पर केंद्र तो परमात्मा है, उस परमात्मा का सभी जीवात्माओं से समान दूरियां हैं, समानता है, परंतु जीवात्माओं का तेज संस्कार अलग अलग है, उसको रुचि शब्द से कहा। एक जीव का दूसरे जीव के साथ ये दो संस्कार भिन्न होने से तालमेल नहीं बैठता है। तो यहां रुचि शब्द का अर्थ तेज संस्कार, तो तेज संस्कार के भिन्न भिन्न होने के कारण से कोई जो है जीवात्मा भगवान शिव की उपासना करता है, कोई विष्णु की, कोई देवी की, कोई गुरु की उपासना करता है, पर सब में वही तत्व है। जैसे केंद्र के साथ सारे बिंदु समान दूरी रखते हैं, ऐसे सारे जीवात्माओं का परमात्मा से समान दूरियां हैं, उसमें कोई भेद नहीं। भेद है संस्कार का, उसी को यहां पर रुचि सबसे कह दिया। रुचिना वैचित्र्यात्, वैचित्र का अर्थ विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से अपने अनुसार उस तत्व की उपासना करता है। अब यहां गिना दिया है त्रयी सांख्यम, त्रयी शब्द है, त्रयी शब्द का अर्थ हमने कल बताया था आपको। त्रयी शब्द का वेद होता है क्योंकि वेद ज्ञान का, उपासना का और क्रिया का प्रतिपादक है। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, वेद में लगभग 80,000 के लगभग 80% मान लीजिए कर्मकांड प्रतिपादक है, 16% समझो उपासना के प्रतिपादक मंत्र मिलते हैं, और बहुत कम समझिए मुश्किल से अब 16 निकाल दो और 80 कितना हो गया है, हाँ, मतलब नाम मात्र ज्ञान कांड के प्रतिपादक वहां पर मंत्र हैं। तो उन मंत्रों में जहां पर ज्ञान का प्रतिपादन है उसको श्रुति कहते हैं, वेदांत कहते हैं। तो उपासना कर्मकांड का ज्यादा प्रतिपादन है, इसलिए प्रतिपादन है कि मनुष्य के अंदर मल विक्षेप दोष है। मल दोष को दूर करने के लिए तरह तरह का कर्मकांड बतलाया, विक्षेप को दूर करने के लिए उपासना कांड के मंत्र हैं, और अज्ञान को, आवरण को दूर करने के लिए ज्ञान कांड के मंत्र हैं। तो त्रयी का अर्थ है इसमें तीन शक्ति, भगवान शिव साक्षात वेद स्वरूप त्रयी स्वरूप हैं। क्योंकि ये जो बुद्धि है, बुद्धि उपाधि के द्वारा ज्ञान होता है, और मन उपाधि से इच्छा शक्ति होती है, और मन के बाद ये शरीर प्राण है, प्राण से क्रिया होती है। जो शिव है वह कैसा है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से युक्त है। क्रिया का उपाधि है प्राण, इच्छा की उपाधि है मन, ज्ञान की उपाधि बुद्धि है। निरुपाधिक होकर के भी वही शिव बुद्धि की उपाधि से ज्ञानार्जन करता है, मन की उपाधि से इच्छण करता है, और प्राण को उपाधि से कर्म संपादित करता है। तो कुछ लोग तो त्रयी के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करते हैं। दूसरा मत सांख्यम आता है। सांख्यम का अर्थ है कपिल प्रयुक्त दर्शन। सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि आप तत्व का विवेक करो, इससे मुक्त हो जाएगा। तत्व विवेक का अर्थ है कि सत्य पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व का अर्थ होता है प्रकृति, अंतःकरण, और जो पुरुष है असंग चिन्मय आत्मा। तो दोनों का जो अलगाव का ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, असंग हूं, चिन्मय हूं, निर्विशेष हूं, इसको प्रकृति से अलग करके जानना, प्रदान से अलग करके जानना, इससे मुक्त होता है। इनके दर्शन में ये जीवात्मा अनंत है, ये अनेकात्मवादी है। वेदांत एकात्मवादी है, सांख्य अनेकात्मवादी है। उनके मत से संसार भी सत्य है। सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि संसार सत्य है, ऐसा ही चलता रहेगा। जितना ये चल रहा व्यवहार, ये व्यवहार जैसा का तैसा चलता रहेगा, और आप अपने को व्यवहार से, संसार से, प्रकृति प्रधान से अलग करके जान लो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन साक्षी आत्मा हूं। परंतु यहां पर ब्रह्म के साथ एकता नहीं होती है। इस सांख्य दर्शन में वेदांत मंत्र है। वेदांत कहता है जीव ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म रूप है और जीव नाना नहीं है, जीव एक ही है। एक जीव होने पर भी उपाधियों के नाना होने से नानात्व की प्रतीति है। जैसे एक ही सूर्य है, सूर्य के एक होने पर भी यदि हजार घड़े हैं तो हजार रूप में सूर्य की प्रतीति होती है सूर्य एक ही। तो वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्म ही ना पर है, जीव ब्रह्म एक ही है, जीव नाना नहीं है। ये नानात्व की प्रतीतियां, अनुभूतियां उपाधियों से हो रही है। परंतु सांख्य दर्शन जीव को भी नाना माना, उपाधि को भी नाना मानते, वहां पर गौरव दोष है। इसके आगे योग दर्शन आता है। योग दर्शन भी सांख्य के समानांतर है, मिलता जुलता है। पर योग में सांख्य में थोड़ा अंतर यह है, योग कहता है कि मात्र प्रकृति पुरुष का विवेचन करने से मोक्ष नहीं होगा, आपको अपने चित्त वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि नहीं, ये तो उसके अंग है, साधन है, पूरक है। योग का मतलब है चित्त वृत्तियों को एकाग्र निरोध करना। तो योग कहता कि भाई प्रकृति पुरुष का विवेक होने के बावजूद भी जब तक आप अपने वृत्ति को निरोध नहीं करोगे तब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। बस इतना अंतर है योग और सांख्य में। योग भी यही मानता है कि आत्मा अनंत है, अनेक है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है। पर इनके यहां एक विशेषता है। विशेषता यह है कि वह परमात्मा की सत्ता को स्वीकारता है। वह कहता है क्लेश कर्म विपाका आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो पंच क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, राग द्वेष, अनुकूलता का नाम राग है, प्रतिकूलता का नाम द्वेष है। तो अविद्या, राग द्वेष, अभिनिवेश बोलते मरण त्रास, और अस्मिता मतलब दृग दृश्य का संबंध, इन सबसे अतिरिक्त विलक्षण जो चैतन्य है वह ईश्वर है। और ईश्वर को योग दर्शन में गुरु ही माना है। सब पूर्वेशापि गुरु कालेन अनवच्छेदात। सब मतलब जो परमात्मा है, पूर्व पूर्व का सबका वही गुरु है, परम गुरु है। इसलिए गुरु है क्योंकि काल का उसमें अवच्छेद नहीं, सीमांकन नहीं। अवच्छेद का होता है सीमांकन। परमात्मा में काल की सीमा न होने से सबका वह सदगुरु है। इस प्रकार से योगी लोग उस तत्व की उपासना करते हैं। इसके बाद आता है त्रय सांख्यम योग पशुपति। पशुपति मत कार्ते सयु मत। यहाँ शैव वैष्णव का तात्पर्य शिव के पूजा से विष्णु के पूजा से नहीं है, एक शैव बड़ा भारी सिद्धांत है, मत है, ऐसे वैष्णव मत है। तो शैव लोग मानते हैं कि बस ये जीव तो पशु है, पशु के पति भगवान शिव है, उनके उपासना से मोक्ष होता है, उनके आशीर्वाद कृपा से। और वैष्णव लोग मानते हैं कि बस भगवान विष्णु संसार के पालन रक्षा करते हैं, उनके जप पूजा पाठ ध्यान से ही साकेत वैकुंठ लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है, इस प्रकार से वैष्णव लोग कहते हैं। प्रभिन्न प्रस्थाने, ये कहते सबके सब भिन्न, प्रस्थान मतलब मार्ग है, फिर भी सबका गंतव्य वह परमेश्वर ही है, इस प्रकार से इस श्लोक में बताया। जैसे मान लीजिए कोई व्यायाम करता हो, अब व्यायाम जब करते हैं तो प्राचीन काल की परंपरा थी या शास्त्रीय विधि है कि पहले अंग प्रत्यंग का व्यायाम करना चाहिए, अंग मतलब इसे प्रत्येक उंगली का फिर इस जोड़ का, इस तरह से करते करते तब जाके पूरा व्यायाम करना चाहिए। आजकल तो लोग ऐसे कर देते हैं ना, नुकसान करता है। पहले प्रत्येक अंग प्रत्यंग का व्यायाम करे फिर पूरे शरीर का करे, ऐसी परंपरा है। परंतु जो लोग केवल शारीरिक व्यायाम करते हैं या एक एक अंग का करते हैं वह जो है ना सफल नहीं होता है। तो यहां पर भी जो एक एक देवता को उपासना करते हैं तो तत्त्व देवताओं से तत्त्व कामना तो पूरी हो जाती है, परंतु चैतन्य जो स्वरूप है उसका अनुभव नहीं होता है। वेदांत कहता है कि सब ब्रह्म है, जैसे कि ये अंगुलियां भी शरीर है ना, ये समझो कि पैर भी शरीर है, आंख भी शरीर है, कान भी शरीर, नाक भी, सब शरीर है, शरीर से भिन्न नहीं। केवल एक अंग का आप खास व्यायाम कर लें, चक्रासन है, शीर्षासन है या मयूरासन है, तो इससे तो तीन अंग तो स्वस्थ रहेंगे, परंतु आंख का व्यायाम नहीं करेंगे, आंख का भी होता है व्यायाम, कान का नहीं करेंगे, मुख का भी होता है व्यायाम नहीं करेंगे, उंगली का नहीं करेंगे, जोड़ का नहीं करेंगे, उसमें फिर दर्द होता है, कई बार शिकायत मिलती आजकल। पर कुशल जो व्यायाम करने वाला योगी है वह अंग प्रत्यंग सबका व्यायाम करता है। इसी प्रकार से जो वेदांत है वो कहता है कि सब परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ये तो अंग प्रत्यंग है, उसी परमात्मा के सारे ये देवता इतने उपास्य हैं, अंग प्रत्यंग हैं। इस प्रकार से यहां पर इस श्लोक में ये उपासनाओं के विषय में बतलाया। अब आगे चलें, समय कम है ना, एक श्लोक और कर लें। महोक्ष खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिन कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणं शुरास्तां ताम्रेद्धिं विदधति भवद्भ्रूप्रणिहितं नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। अब यहां पर उपास्य भगवान शंकर के स्वरूप को बतला रहे। जब किसी को उपासना करनी हो तो उपास्य का चिंतन करना पड़ता है, चिंतन के पहले उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के चिंतन असंभव है, पहले जानकारी होगी तब जाके चिंतन होता है। तो महोक्ष खटवांगम, महोक्ष का अर्थ होता है हिंदी में क्या, बूढ़ा बैल बोलते हैं ना, खटवांग का अर्थ है खाट का एक पाया, परशु मतलब की कुल्हाड़ी, अजिन मतलब की हाथी का चमड़ा, भस्म फड़ीना का अर्थ हुआ सांप कपाल, इतना ही बरद हे बर देने वाले तंत्रोपकरणम आपके घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं। देखो हम लोगों के पास कितना है, भोले बाबा के पास कुछ भी नहीं है, जरा सी सामग्री है। सुरास्ताम ताम रिद्धिम, ऐसा अनुय कीजिए, भवद भ्रूप प्रणिहिता ताम ताम रिद्धि सुराम विदधति, ऐसा अनुय है। भवद मतलब आपके, भ्रू का अर्थ है कृपा कटाक्ष, आपके कृपा कटाक्ष से हिताकार्थ विहिता प्राप्त करके तामताम रिद्धि उन रिद्धियों को समृद्धियों को, जैसे कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भगवान शंकर की उपासना से प्राप्त किया, कुबेर को खजांची बना दिया, इंद्र को इंद्रासन दिया, तो आपके कृपा से सारे पदों को ऐश्वर्यों को उपलब्ध होकर के धारण करते हैं। श्री मेमन में आने वाला है कि भगवान विष्णु हर दिन काशी में मणिकर्णिका घाट है, उस मणिकर्णिका घाट पर 1000 कमल से भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने एक कमल लुप्त कर दिया, पूजा 999 कमल चढ़ाए, एक कमल मिला नहीं, बहुत परेशान, पूरा ढूंढे कहीं नहीं मिला, बेचारे दुखी होकर बैठ गए, क्योंकि बिना 1000 पूजा किए वे कुछ भी नहीं करते थे। उन्हें ध्यान आया कि लोग हमें कहते हैं कमल नयन, तो हमारा नयन भी कमल के समान है, क्यों इसी को चढ़ा दूं। जैसे ही भगवान विष्णु ने कमल अपना निकाल के चढ़ाया, तत्काल भगवान शंकर ने दर्शन दिया, उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, इसीलिए उस जगह का नाम है चक्र पुष्करणी तीर्थ कहते हैं, जहां पर ये घटना घटी वाराणसी में है। तो भगवान विष्णु भी आपकी आराधना करके सुदर्शन चक्र को प्राप्त किए हैं, धारण करते हैं, उससे जगत की रक्षा करते हैं, फिर भी आपके पास केवल इतना ही मोक्ष खटवांग परशु ये सब घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, सबका उत्तर दे दिया यहां पर। जो स्वात्मा राम है वो विषय रूपी मृग तृष्णा में कभी भटकता नहीं। इस संसार का ऐश्वर्य सामग्रियां ये मात्र मृग तृष्णा है, मृग तृष्णिका से किसी को शांति नहीं मिल सकती। किसी को बोलो ना आप कि भाई देखो संसार तो बिल्कुल झूठा है, मिथ्या है, काम चलाऊ है, सपना है, तो अंत में क्या बोलते हैं कि महाराज बात बिल्कुल सही, पर कम से कम काम चलाने के लिए कुछ तो धन चाहिए, कुछ तो मकान दुकान चाहिए। आप काम चलाऊ रेगिस्तान से प्यास बुझा सकते? बहुत गर्मी लग रही, आप परेशान हैं, हम कहें कि भाई रेगिस्तान में बहुत जल दिखाई पड़ रहा, नहा लो और पी लो। जब रेगिस्तान के उस जल में न स्नान हो सकता है न प्यास बुझ सकती है, तो भला इस स्वाप्निक मृग तृष्णिका के समान जो संसार है इससे कैसे शांति मिलेगी? शांति पाना संभव है, इसीलिए नहीं स्वात्मा राम स्वरूप में रमण करते भगवान शंकर, वो किसी चीज की उन्हें अपेक्षा नहीं है। ये तो देखो बहुत मोटा अर्थ हमने बताया, अब देखिए जो इसका वास्तविक सही सही अर्थ है, क्योंकि ये जो उपनिषद है या वेद ये परोक्षवाद है। परोक्षवाद जानते हैं ना, परोक्षवाद मतलब कि ऐसे कई बार कहना किसी और को है, किसी और को बोलते हैं, डांटना है किसी और को पर डांटते किसी और को, ये परोक्षवाद कहलाता है। एक कहानी सुनोगे आप लोग जो है कि एक बहुत गरीब घर का बालक था, उसके पिताजी हमेशा मार पीते थे, परंतु मेहमान के सामने कैसे कहें कि चल के मार पी लीजिए, तो उसने कहा कि मनुआपुर से धनुका आया है, नहीं धनुकापुर से मनुआ आया है, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धनुकापुर से मनुआ, धनुका मल्लय की धान, मनुका मल्लय की माण आया है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, शीतल मल्लय ठंडा हो जाएगा। तो लगा कि ये कोई जो है आदमी आया है, धनुका एक गांव है, मनुआ उसका नाम है, और आके बैठा है, नहीं जाएंगे तो शीतलपुर को चला जाएगा। देखो काम भी बन गया, इज्जत भी रह गई घर की। ऐसे वेद परोक्ष कथन करता है। महोक्ष बोलते बूढ़ा बैल, कल्पना कीजिए भगवान शंकर का बूढ़ा बैल कहीं वाहन संभव है? जब आज का इंसान सवारी नहीं कर सकता तो भगवान शंकर कैसे चल सकते? महोक्ष शब्द का अर्थ है, आप शांति पाठ करते होंगे उसमें आता है, यश छंद दशाम ऋषभो आता है ना शांति पाठ में, छंदसा मतलब जो वेदों का ऋषभ है, वहां ऋषभ है, तो यहां पर वही ऋषभ है। तो छंदों का ऋषभ क्या है? यह छंदसाम ऋषभो अमृत रूप, जो वेदों, हर दिन शांति पाठ में पढ़ते हैं हम लोग, शायद यहां है कि नहीं पता नहीं, कैलाश की परंपरा है, 10 शांति मत में एक भी है। तो ऋषभ यहां जो शब्द है उसका अर्थ है अमृत रूप ओंकार। चारों वेदों में श्रेष्ठ है ओंकार जो ऋषभ के समान है। जैसे गायों में ऋषभ की महिमा होती है, सांड की, ऐसे ही वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ है, वह है ओंकार। और इसी बात को पतंजलि जी ने कहा है, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा को बताने वाला ओंकार है। वाहन से आप चल करके अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, ये जो ओंकार रूपी जो वाहन है इसके द्वारा आप जो है ना परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो भगवान यही वाहन है, चलने का आधार है। खटवांग, खटवांग शब्द का अर्थ है कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे खाट के चार पाया होते हैं ऐसे ही इसके चार पाया है। तो भगवान शंकर खटवांग एक अंग रखे हैं, वह मोक्ष, धर्म अर्थ काम। अर्थ को तो दे दिया कुबेर लक्ष्मी जी को, और कामना दिया कामदेव को, सबके मन में कामना उत्पन्न करता है, और बच गया धर्म। धर्म जो है साक्षात विष्णु रूप है, और अपने आप भगवान शंकर ने मोक्ष रखा अपने पास। इसलिए स्मृति श्रुति कहती है ज्ञानम इच्छित शंकरात, ज्ञान चाहिए मोक्ष चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। तो खटवांग का अर्थ हुआ मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष जो चार पाया है सदाशिव के, उसका एक अंग मोक्ष अपने पास रखा है। परशुर अधीनम, परशु बोलते हैं ये जो कुल्हाड़ी, पर यहां परशु का अर्थ है कि नित्यानित्य असंग शास्त्र के द्वारा नित्यानित्य का विवेक ये परशु है। अजीन का अर्थ है हाथी का चमड़ा। देखो हाथी का जो चमड़ा है ना किसी काम नहीं आता है, सांप का त्वचा काम आता है, गाय का भी आता है, पर हाथी का नहीं आता है, बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, किसी के काम की चीज नहीं। उसको तो भगवान शंकर धारण किए हैं। यहां देखो ये हाथी के चमड़े का अर्थ है कि नाम रूपात्मक जो जगत है ना बिल्कुल बेकार है, वही भगवान का आवरण है। जैसे कपड़ा हमारे शरीर का आवरण है, ढक के रखा है, कपड़ा से माला ढका है, माला अंदर पहने, ऐसे ही नाम रूपात्मक जो ये हाथी का चमड़ा है आपका अजीन है उसको ओढ़ रखे हैं। अंदर भगवान शिव बैठे हैं परंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, जब तक कपड़ा नहीं हटाएंगे तब तक शरीर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे ही ये नाम रूपात्मक ही समझो कपड़े हैं। भस्म फणिनम, भस्म का अर्थ यहां पर किया है कि जो गीता में आता है ना कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो यहां पर शरीर का बाद होने के बाद केवल ज्ञान बचता है, तो ज्ञान यहां पर भस्म है। भस्म का ये जो उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं चिता भस्म नहीं है, जहां पर चिता भस्म आता है वहां पर भी चिता का अर्थ है नाम रूपात्मक प्रपंच। उसका बाद होने के बाद, जैसे यहां घटालो दृष्टांत में हम इस तौलिया को जला देंगे या जो है कोई चीज जला देंगे, जलाने के बाद केवल भस्म रहता है, कुछ नहीं बचता है। ऐसे चिता को, चिता मतलब कोई व्यक्ति ले लो, व्यक्ति जलने के बाद जब नाम मिट गया रूप मिट गया तो केवल ज्ञान रहता है। तो ज्ञान ही भगवान शंकर का भस्म मतलब की श्रृंगार की वस्तु है। जब लोग पाउडर लगाते हैं ना तो भगवान शंकर ज्ञान में चिन्मय है, यह इसका तात्पर्य शेष कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।